मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा।
ओम शांति। आज राजयोग शिविर के दूसरे दिन प्रातःकालीन सत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आपके टाइम टेबल में हुआ है कि जो गीता ज्ञान द्वारा सुख शांति सत्र शाम को था उसके बदले आज सवेरे है। तो श्रीमद् भगवद् गीता भारत का सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि धर्म पुस्तक कहो या कर्म पुस्तक कहो, क्योंकि श्रीमद् भगवद् गीता एकमात्र शास्त्र दुनिया का है कि जिसके अंदर भगवान वाच फर्स्ट पर्सन में परमात्मा के महावाक्य है। बाकी सभी धर्म पुस्तकों में दिव्य आत्माओं की महान आत्माओं की वाणी है, लेकिन श्रीमद् भगवद् गीता भगवान वाच डायरेक्ट परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है। और इसीलिए उसको कहा ही गया गीता, माना भगवान का गाया हुआ मधुर गीत, के जिसमें सभी वेदों के सार समाये हुए हैं। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद् गीता को माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, श्रीमद् भगवद् गीता भी मानव जाति के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान, विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान उसमें समाया हुआ है। श्रीमद् भगवद् गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है, पूरी मानव जाति के लिए है। दूसरा, उसको माता की उपमा इसीलिए दी गई है कि जिस तरह हर बच्चे का संबंध माँ के साथ जरूर होता है, ठीक इसी तरह दुनिया के सभी धर्मों का संबंध भी श्रीमद् भगवद् गीता के साथ अवश्य है। जिस तरह महाभारत के अंदर युद्ध की बातें आती है, पांडव और कौरवों के बीच में, उसी बात को इस्लाम धर्म में जिहाद के रूप में दिखाया है। उनके धर्म पुस्तक में अच्छाई और बुराइयों के बीच में युद्ध है, तो उसी को ही क्रिश्चियन धर्म में होली वॉर कहा गया है, जो फरिश्तों और शैतानों के बीच में है। तो हर धर्म के अंदर अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध की बातें अवश्य आती है। साथ ही साथ जिन धर्मों में ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, तो जैन धर्म में कर्मेंद्रिय को जीतने की बातें आती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन को कर्मेंद्रिय जीत होने के लिए भगवान ने प्रेरित किया, क्योंकि जिसने कर्मेंद्रिय को जीता वही मन जीत जगत जीत बन सकता है। और इसीलिए जैन धर्म में कर्मेंद्रिय को कैसे वश में रखना है वो उनके धर्म पुस्तक में आता है। जैन का मतलब ही है जितेंद्रिय, इसीलिए वो एक दूसरे को भी जब मिलते हैं तो जय जिनेंद्रिय, यानी जिसने कर्मेंद्रिय को जीता है उसकी जय। वो श्रीमद् भगवद गीता से ही बातें उठाई गई है। और इसी तरह बौद्ध धर्म में देखा जाए तो महात्मा बुद्ध ने कर्म योग की बातों को श्रीमद् भगवद गीता से उठाया है। कर्म ही धर्म है, उसी के ऊपर जोर दिया, क्योंकि उन्हें भी ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, इसीलिए धर्म पद में कर्म योग की बातों को लिया गया है। तो हर धर्म का संबंध अगर देखा जाए तो किसी न किसी रूप से श्रीमद् भगवद गीता से अवश्य जुड़ा हुआ है। तब कहा कैसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान जो श्रीमद् भगवद गीता में है और किसी धर्म पुस्तक में नहीं है। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, तनाव मुक्त कैसे होना है, भय मुक्त कैसे बनना है, यही अर्जुन को भगवान ने सिखाया। तो ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान जो अतुलनीय है, और उसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णवित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। तब कहा कि श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। हर धर्म के लोगों ने गीता का अध्ययन किया है, गीता को समझना चाहा है। आज जितनी भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेशन है उतना और किसी पुस्तक को नहीं मिला है, क्योंकि जैसे कहा कि ये ऐसा धर्मशास्त्र कर्मशास्त्र है जिसमें अमृत समाया हुआ है। दुनिया की जितनी भी महान हस्तियां हो गई किसी भी क्षेत्र के अंदर, जिन्होंने संसार में शिखर को प्राप्त किया, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों न हो या आइंस्टाइन क्यों न हो, लेकिन ये सभी महान हस्तियों ने उस महानता के शिखर को तभी छुआ है जब जीवन के अंदर गीता को आत्मसात किया हुआ है। तो गीता व्यक्ति को इतना ऊंचा उठा देती है, उसकी शिक्षाएं इतनी महान है, तब कहा कि व्यक्ति जीवन के अंदर संसार के अंदर अमर हो जाता है जब गीता का अध्ययन करता है। श्रीमद् भगवद गीता हम तक कैसे पहुंची? अगर उस भूमिका को थोड़ा सा देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस महान धर्म ग्रंथ की रचना करने के लिए। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी जब समाधि अवस्था में बैठते थे तो कई बार वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे, साधना में लीन हो जाते थे और उस समय उन्हें दिव्य अनुभव, दिव्य साक्षात्कार होता था। और इस तरह से जब वो एक बार समाधि में बैठे थे और उस ट्रांस की स्थिति में चले गए तो उन्हें गीता ज्ञान प्राप्त होने लगा। जब समाधि अवस्था से नीचे उतरे तब उन्हें लगा कि इतना अमूल्य ज्ञान जो आज मुझे मिला है ये पूरी मानव जाति तक मुझे पहुंचाना चाहिए। और इसीलिए जब लिपिबद्ध करने बैठे लेकिन ट्रांस की स्टेज की खूबी ये होती है कि कुछ बातें लुप्त तो हो गई, भूल गए। तो कहा जाता है कि पहले दिन का गीता ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा क्योंकि वो लिख ही नहीं पाए। तब उन्होंने भगवान से विनती किया कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो परंतु अगर मैं उसको लिख ही नहीं पाऊंगा तो मनुष्य तक कैसे पहुंचा सकूंगा, कम से कम मुझे कोई लिखने वाला मिल जाए तो मैं इतनी ऊंची बातों को संसार तक पहुंचा सकूं। क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरे दिन भी ये ज्ञान की बातें चालू रहेगी क्योंकि आधे में थी। जब भगवान से ये विनती किया तो भगवान ने उन्हें ये इशारा दिया कि आप गणेश जी का आवाहन करिए। और इसीलिए वो गणेश जी को निवेदन करते हैं तो महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है जिसमें वो गणेश जी को निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने, यह ग्रंथ में मेरे मन की अति उच्च अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं जो कि मेरे ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत सुंदर बात यहां उन्होंने स्वीकार किया है कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिल रहा है परंतु उसको प्रेजेंट करने के लिए मैं अपनी मन की कल्पना का विस्तार कर रहा हूं। भावा कि जिस तरह आज मुझे किसी बच्चे को कोई मॉरल सिखाना हो, ज्ञान उतना ही है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ज्ञान इतना ही है। लेकिन अगर मैं रोज सुबह उठ करके उसका उपदेश दूं कि सच बोलो, तुम सच बोलो, तो शायद वो बच्चा दो दिन सुनेगा, तीन दिन सुनेगा, उसके बाद कहेगा मुझे पता है, आप मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, और उसके मर्म को वो समझ नहीं पाएगा। परंतु उसी ज्ञान को मैं अपनी मन की कल्पनाओं से एक कहानी का निर्माण करती हूँ जिसमें एक सच का पात्र लूँ, एक झूठ का पात्र लूँ और फिर उस बच्चे को के सामने उस बात को प्रेजेंट करूं कि देखो झूठ बोलने से कैसे नुकसान होता है, हार होती है, जीवन में अधोगति को प्राप्त करते हैं और सच बोलने से व्यक्ति की उन्नति होती है, प्रगति होती है और जीवन में हमेशा जीत का अनुभव होता है। तो उस कहानी को सुनने के बाद शायद उस बच्चे की समझ में ये बात आ जाएगी कि झूठ क्यों नहीं प्रयोग करना चाहिए और सच का प्रयोग क्यों करना चाहिए। और शायद उस कहानी से प्रेरित होकर के जीवन में वो कभी कभी उसका प्रयोग करना भी चाहेगा कि मैं भी सच बोल करके देखूं। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी भी जानते थे कि ये ज्ञान की बातें इतनी ऊंची है, लेकिन अगर उस बात को सीधा उपदेश के रूप में अगर दिया जाए तो आज के मनुष्य भी शायद उस बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला है, परंतु उसको प्रेजेंट करने के लिए मैं अपनी मन की कल्पनाओं का विस्तार से उसको प्रेजेंट कर रहा हूं। यानी बहुत स्पष्ट ये बात उन्होंने स्वीकार की है और आरंभ में ही उसको बता दिया है। जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तब मेरे मन में विचार आया कि गणेश जी का आवाहन क्यों किया। जिस काल में महर्षि वेद व्यास जी थे उस काल में और भी ऋषि मुनि होंगे, वो किसी को भी बुला करके लिखवा सकते थे, किसी भी ऋषि मुनि को कहते थे आप आइए मेरा लेखक बनिए, मैं जो ज्ञान की बातें सुना रहा हूं आप लिखते जाइए, कोई भी लिख देता था। फिर गणेश जी का आवाहन क्यों किया? तो गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि के देवता, और जो ज्ञान की बातें उन्हें ट्रांसेंडेंटल स्टेज में प्राप्त हो रही थी, समाधि अवस्था में प्राप्त हो रही थी, वो बातें बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस की है। और अगर उस समय के कोई भी ऋषि मुनि को लेते थे तो शायद उनकी मानसिक स्थिति उस कॉन्शियसनेस की बातों को समझने में सक्षम नहीं होती थी। जबकि गणेश जी जिसको कहा जाता है बुद्धि के देवता, तो उस बुद्धि के देवता को उस कॉन्शियसनेस वाली बातों को समझना आसान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने साक्षात गणेश जी का आवाहन किया। हम सभी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब गणेश जी आए तो उन्होंने एक शर्त रखी, और उनकी शर्त थी कि मैं इतना तीव्र गति का लेखक हूं कि जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त सामने रखी, और उनकी शर्त थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा मेरी हर बात को आप समझकर लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य रख लिया, और कहा जाता है जब पहला ही श्लोक उच्चारण हुआ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करके तुम मुझे सुनाओ कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है। तो पहले श्लोक में कहा जाता है गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। और कहा जाता है कि आगे श्लोकों में इतने सुंदर भावपूर्ण श्लोक थे कि जिसको सुनते हुए गणेश जी भी रुक जाते थे, जिसके भाव में समा जाते थे, खो जाते थे और लिखना भूल जाते थे। इतनी सुंदर बातें श्रीमद् भगवद गीता में है, और इसीलिए गणेश जी का आवाहन किया गया। लेकिन जब मैं ये बात सोचती हूँ इतनी ऊंची कॉन्शियसनेस की बातें, आज के दुनिया के मनुष्य जो ग्रॉस लेवल पर है वो उन ऊंची बातों को कितना समझ पाते होंगे। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर गीता पर टीकाएं लिखने वाले भी बहुत हैं। हर कोई ने अपना अपना भाव निकाला है कि गीता के अंदर क्या कहा गया है। मुझे याद आता है कि कहा जाता है कि फ्रांस में नॉस्ट्रोडेमस हुए, जिन्होंने विश्व का भविष्य एक गोले में देखा, और जब वो गोले में विश्व के भविष्य को देखते थे तो लिखते थे, और लिखते थे तो काव्य रूप में लिखा उन्होंने, और काव्य रूप में भी इतनी अलंकारिक भाषा को लेकर के उन्होंने लिखा कि आज के समय के मनुष्य जब उस बात को पढ़ते हैं, नॉस्ट्रोडेमस की लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, तो भी समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद लोग कहते हैं कि हाँ, नॉस्ट्रोडेमस ने ये लिखा था, पहले नहीं बता सकते। इतनी ऊंची काव्य की अलंकारिक भाषा है वो, इसीलिए लोग समझ नहीं पाए। ठीक इसी तरह हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने विश्व का भविष्य समाधि में देखा। महर्षि वेद व्यास जैसे महान ऋषि जिन्होंने समाधि में विश्व का भविष्य खाली देखा नहीं, लेकिन उस समय जो स्थिति होगी उसमें समाधान क्या होना चाहिए वो भी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। नॉस्ट्रोडेमस ने समाधान नहीं दिए हैं, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने जब विश्व के भविष्य को देखा कि आने वाले समय में किस प्रकार की दुनिया होगी, कैसे कैसे अधर्म के कृत्य होंगे, और उस समय का समाधान क्या होगा, वह भी उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में मनुष्य के सामने रखा है। और इसीलिए हर स्तर का समाधान हमें श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। एक मनुष्य की मनस्थिति का समाधान अर्जुन के रूप में जब दिखाया है, पारिवारिक स्थिति में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसका समाधान, सामाजिक स्थिति में जो बातें आती है उसका समाधान, राष्ट्रीय स्थिति में जो बातें आती है उसका समाधान, और वैश्विक स्थिति में जो समस्याएं आएगी उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में है। इसीलिए गीता महान है कि हर स्तर की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में एक ही पुस्तक के अंदर महर्षि वेद व्यास जी ने उसको प्रकट कर दिया। तो कितने महान ऋषि मुनि हमारे भारत में हो गए हैं। कैसे ये समस्याओं का समाधान है, तो अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु महाभारत का समय जब आया तो वह इतना उदास हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया, और जिसको आज के युग की भाषा में कहते डिप्रेस्ड हो गया, तब भगवान ने उसको मोटिवेट किया और उस युद्ध में जीतने के लिए प्रेरित किया। कहने का भावार्थ यह है कि आज मनुष्य जीवन एक संघर्ष है, जहां हर व्यक्ति के जीवन के अंदर युद्ध चल रहा है। आज एक बच्चे को भी पढ़ाई के साथ कितना युद्ध करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए कुरुक्षेत्र में ये युद्ध दिखाया, यानी जीवन एक कुरुक्षेत्र बन गया है, मनुष्य का मन एक कुरुक्षेत्र बन गया है, जहां निरंतर उसको युद्ध करना पड़ता है। और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जब उसको कभी कभी जीवन असार महसूस होने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, उसका विश्वास टूटने लगता है, मूल्य बिखर जाते हैं, उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, दया की हदें टूटने लगती है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट भी कर डालते हैं। जीवन के संघर्ष को जब नहीं कर पाते हैं तो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, कायर बन करके हारने का प्रयास करते हैं, या जीवन के उस संघर्ष से भागने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सुंदर महर्षि वेद व्यास जी ने अपने मन की कल्पना के विस्तार से इस बात को सामने रखा है कि किस तरह जीवन के संघर्ष में भागने की जरूरत नहीं है, या जीवन के संघर्ष में हारने का मतलब नहीं है, लेकिन जीवन के संघर्ष में कैसे जीतना चाहिए, वो समाधान श्रीमद् भगवद् गीता में दिया हुआ है। साथ ही साथ एक पारिवारिक स्थिति का समस्या का समाधान, परिवार के अंदर आज झगड़े किस बात पर होते हैं, कोई भी परिवार के अंदर अगर देखा जाए तो झगड़े हमेशा जमीन और जायदाद को लेकर के ही होते हैं। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी मन की कल्पना के विस्तार से गुरु परिवार को दर्शाया कि जहां भी झगड़ा था जमीन और जायदाद को लेकर के ही, पांडवों ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया कि 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं। और मां पिता पुत्र मोह में अंधे वो दुर्योधन को कुछ नहीं कह पाते हैं। भाव ये है कि वो पांडवों को अपने मन में स्थान देना नहीं चाहते थे, उन्हें सुख से रहने देना नहीं चाहते थे, और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए परंतु घृणा द्वेष क्रोध अन्याय प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। आज के ये समाज के अंदर परिवारों की हालत यही तो है। परिवारों में जो झगड़े हैं, कितनी पीढ़ियों तक वो झगड़े चलते रहते हैं, हम सभी जानते हैं, अनुभवी है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने एक ही पुस्तक में उसका समाधान भी दिया हुआ है। साथ ही साथ समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं। आज समाज में शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? है, है, बहुत है। महाभारत में तो एक ही शकुनी दर्शाया एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन आज के समाज में हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है। और समाज भी कुकर्मों और विकर्मों के प्रति अंधा, जो धर्म अधर्म कर्तव्य कर्तव्य भलाई बुराई न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते हैं, और किस तरह पांडव जैसे लोगों के साथ, जो नीति पर चलने वाले लोग हैं उनके साथ अन्याय होता है, और समाज भी उस वक्त कुछ नहीं कहता। ऐसी जब सामाजिक स्थिति हो जाती है उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद् गीता है। तो राष्ट्रीय स्थिति, आज राष्ट्र के अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ है? दुनिया का कोई भी राष्ट्र ले लो, हर राष्ट्र के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो दुनिया का कोई और देश हो, हर जगह प्रॉब्लम कहाँ है? कुर्सी का ही खेल है। हर कोई कुर्सी चाहता है और कुर्सी के पीछे अंधा हो जाता है। ठीक इसी तरह धृतराष्ट्र, महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, जो नामों का चयन किया है वो भी कितना सुंदर, कि धृतराष्ट्र, जब राष्ट्र को धृत भावना हड़प कर बैठती है, पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए, जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, जहाँ मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बहुत ही भयानक होता है। तो इसीलिए कहा कि जो राष्ट्रीय स्थिति के प्रॉब्लम्स है उसका समाधान भी गीता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है अपनी पुस्तक में कि जब भी मैं राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर के उलझ जाता था, मैं गीता का कोई भी पन्ना खोल करके बैठ जाता था और पढ़ना आरंभ करता था, मुझे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता था। बहुत सुंदर तरीके से इसीलिए दर्शाया है। और पूरे विश्व के अंदर आज क्या है, अधर्म अपनी चरम सीमा पर है, मनुष्य आत्मा अहंकार के वशीभूत, पांच विकारों के वशीभूत किस तरह अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कहा कि आज संसार एक विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर के इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। तो इसीलिए कहा व्यक्ति की मनोदशा से लेकर के विश्व तक हर स्तर का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता महान है। ऐसा दुनिया का कोई धर्म पुस्तक नहीं जो प्रैक्टिकल जीवन के लिए एक गाइड होकर के, एक बुक होकर के हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को आगे देखते हैं। कुरु परिवार है, बहुत सुंदर एक दृश्य हमारे सामने महर्षि वेद व्यास जी ने रखा है कि कुरु परिवार है। कुरु शब्द का मतलब है करो या कर्म करना। उसमें दो है, पांडव और कौरव। पांडव माना जो भगवान से प्रीत करने वाले, पवित्र कर्म करने वाले, और कौरव माना जो भगवान से विपरीत अपवित्र अधर्म के कर्म करने वाले। दृश्य को सामने ले आओ कि पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन दोनों ही भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर बहुत सुंदर महाभारत का यह दृश्य आता है कि दोनों ही जब भगवान से मदद मांगने जाते हैं तो दुर्योधन सिरहाने बैठता है और अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है। उस समय भगवान लेटे हुए थे, सोए हुए थे। कहा जाता है कि कृष्ण, कृष्ण का मतलब है जो सबसे आकर्षणमय मूरत। परमात्मा के लिए कहा गया है लेकिन वो आकर्षणमय मूरत श्री कृष्ण के रूप में दर्शाई है। तो कृष्ण और श्री कृष्ण में अंतर है। गीता ज्ञान कृष्ण ने दिया, यानी सबसे आकर्षणमय मूरत जो परमात्मा की है, उस ज्योति स्वरूप की है, लेकिन उसको एक फिजिकल फॉर्म देकर के महर्षि वेद व्यास जी हमें कुछ जीवन के अंदर उपयोगी बातें समझाना चाहते हैं। और इसलिए दिखाया कि श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और दुर्योधन सिरहाने जाकर बैठता है और अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है। कहा जाता है कि जब भगवान ने आंखें खोली, सामने अर्जुन को देखा और पूछा, हे अर्जुन तुम कब आए? तब दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। भगवान ने कहा ठीक है, और कहा एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए तुम्हें? जब ये बात कही तो साथ में एक वाक्य और जोड़ दिया भगवान ने कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर के रथ चलाऊंगा। जब ये बात कही तो दुर्योधन ने सोचा, जब भगवान शस्त्र उठाने वाले ही नहीं है, युद्ध करने वाले ही नहीं है, खाली सारथी बनकर रथ चलाने वाले, तो मांग कर फायदा क्या। जबकि उसको शकुनी ने सिखा कर भेजा था कि तुम उसी को मांग लेना, क्योंकि जिस तरफ वो रहेगा विजय उसी तरफ होगी। लेकिन जब भगवान ने ये बात कही तो दुर्योधन ने सोचा, फिर तो मांग कर फायदा क्या, उससे तो मैं अक्षौणी की सेना न ले लूं। और इसलिए उसने अक्षौणी की सेना मांग ली। और अर्जुन ने कहा, भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो भगवान की शक्ति को, क्षमता को जानता था कि भगवान अगर युद्ध न भी करे तो भी ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं कि विजयी बना सकते हैं। कहने का भावार्थ, आज दुनिया में भगवान की शक्ति को पहचानने के लिए पैरों के पास खड़ा रहना माना नम्रता का प्रतीक। नम्रता जीवन में बहुत जरूरी है। जो सिरहाने बैठता है माना अहंकार का प्रतीक। जब किसी को जीवन में अहंकार आता है तो यही कहा जाता है कितना सर ऊंचा लेकर घूम रहा है। तो दुर्योधन भी सर ऊंचा लेके घूम रहा था, अहंकार का प्रतीक। और वो प्रतीक महर्षि वेद व्यास जी ने कितना सुंदर इस दृश्य के माध्यम से सिखाया कि भगवान की शक्ति को, क्षमता को तब नहीं पहचान सकते जब व्यक्ति अहंकार में होता है। और इसीलिए वो अक्षौणी सेना भी उसके साथ क्यों ना हो जाए, सारी दुनिया की शक्ति उसके साथ क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी हार निश्चित है, वो कभी विजयी हो नहीं सकता है। जीवन के अंदर अगर भगवान का साथ चाहिए, हर संघर्ष में विजयी होना चाहते हो, तो भगवान को साथी बनाओ। अक्षौणी की सेना साथ में हो जाए तो भी विजयी नहीं हो सकता जब व्यक्ति अहंकार के वश होता है। कितनी सुंदर बात महर्षि वेद व्यास जी ने प्रैक्टिकल जीवन के लिए ये सिखाई हमें इस दृश्य के माध्यम से के पवित्र कर्म करने के लिए, भगवान को अपना साथी बनाने के लिए, भगवान की क्षमता को पहचानने के लिए जीवन में नम्रता बहुत आवश्यक है। अहंकार के वश अगर होंगे तो जीवन के हर संघर्ष हार में परिवर्तित हो जाएगी, वो कभी विजयी हो नहीं सकता है। मैं जब इस बात का अध्ययन कर रही थी, मेरे मन में एक विचार आया कि अक्षौणी की सेना किसकी थी। सोचने की बात है, अक्षौणी की सेना थी किसकी, नारायणी सेना थी। सोचने की बात है, जिस सेना को जिस मालिक ने परवरिश किया हो, जिस सेना को जिस मालिक ने परवरिश किया हो, अगर वो मालिक कहे भी जाओ तुम सामने के उसमें चले जाओ, शत्रु के उसमें चले जाओ, लेकिन जिसका मालिक सामने के उसमें होगा, तो वो व्यक्ति भले भगवान सारथी के रूप में अर्जुन का रथ चलाते थे, कौरवों को अक्षौणी सेना दे दी, थी तो नारायणी सेना। लेकिन जब भगवान सामने हो तो वो अपने मालिक के सामने शस्त्र उठाने की जरूरत करेंगे। तो दुर्योधन तो वैसे ही वहां ही हार गया, क्योंकि न भगवान की शक्ति को पहचान सका, न ये समझ सका कि अक्षौणी की सेना भी तो उसी की है, वो उसके सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत कैसे करेंगे। तो हार तो उसकी वहीं से हो गई। जीवन के अंदर कई चुनौती आती है, लेकिन वो चुनौतियों में जीतने के लिए पहले जीत यहां से होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता, कोई भी युद्ध जीतता है या हारता है, वो यहां से जीत होती है या हार होती है। अर्थात जब एक गलत चॉइस कर लिया, गलत निर्णय ले लिया, तो हार निश्चित है। और जब जीवन के अंदर कोई भी चुनौती में सही फैसला लिया गया, या सही निर्णय लिया गया तो जीत उसी समय से आरंभ हो जाती है और हर पल जीतने का एहसास वो कराती ही जाती है। तो जीवन के अंदर जीतना या हारना का आधार मनुष्य के अपने मन के विचार है, अपने हर फैसला है, सही या गलत फैसला। इसलिए कहा जाता जीवन के अंदर हमेशा कोई भी मोड़, कोई भी संघर्ष, कोई भी चुनौती जब आती है तो वहां से दो रास्ते होते, एक सही रास्ता एक गलत रास्ता, और चुनाव हमें करना है कौन सा रास्ता हमें अपनाना है। और जब व्यक्ति गलत रास्ते का चुनाव करता है हार उसी समय है, और जब व्यक्ति सही रास्ते का चुनाव करता है भले कितनी भी कठिनाई आए लेकिन जीत वहां से आरंभ हो जाती है। तो जीवन के अंदर हमेशा सही फैसला करना, महर्षि वेद व्यास जी ने कितना सुंदर ये बात समझाई कि गलत फैसले करने से उसी समय हार निश्चित हो जाती है और सही फैसला करने से जीत उसी समय से निश्चित हो जाती है, भले उसके सामने कितनी भी बातें आए, रोड़े आए, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। पांडव और कौरव भाई भाई थे, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। परसेंटेज हमेशा कितने पर निकलता है? परसेंटेज हमेशा कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है। सारी दुनिया को अगर 100% के रूप में लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे? 5%। सिर्फ 5% पांडव है। और महर्षि वेद व्यास जी ने ये बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है कि पांडव माना जो भगवान से प्रीत करने वाला, पवित्र कर्म करने वाला, दैवी प्रकृति वाला, दैवी प्रवृत्ति वाला। उस 5 पांडव में भी युधिष्ठिर कितने होंगे आज की दुनिया में? युधिष्ठिर माना स्थिर बुद्धि वाला। युधिष्ठिर युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, इसीलिए उसको धर्मराज कहा, जो हमेशा सही फैसला करने वाला, सही मार्ग को अपनाने वाला युधिष्ठिर। तो आज की दुनिया के अंदर जहां लोगों का वेवरिंग माइंड है, ऐसे वेवरिंग माइंड की दुनिया में स्थिर बुद्धि वाले कितने होंगे? कितने होंगे? ओनली 1%। दूसरा नंबर है भीम, स्ट्रांग विल पावर, कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी चीज को उखाड़ के फेंक देने वाला, आत्मशक्ति से संपन्न, आत्मबल से युक्त, यह भीम। तो आज की दुनिया में जहां लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रांग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, जो अच्छी बातों को अर्जन करने वाला, ग्रहण करने वाला। आज की दुनिया के अंदर जब चारों ओर नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी में पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, यानी जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया में जहां लोगों के जीवन में न नियम है न सिद्धांत है, ऐसे जीवन, ऐसे संसार में नियमों पर चलने वाले, जीवन जीने वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। और पांचवा नंबर है सहदेव, जो सहयोग देना जानता है, हर किसी को सहयोग देना जानता है, अच्छे कार्य में अपना सहयोग देना जानता है। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले बहुत है, लेकिन सहयोग देने के बाद ये इच्छा मन के अंदर रहती है कि मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है। या मेरा सम्मान जरूर होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने इतना सहयोग दिया है। परंतु सहदेव ऐसा था जो बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाला, तो आज की दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। आप सभी कौन हो? आप सभी कौन हो? पांडव तो हो तभी यहाँ बैठे हैं, कौरव यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। गीता ज्ञान तो पांडवों के लिए ही होता है, तो आप सभी पांडव हैं, ये तो बात बराबर है, लेकिन कौन सा पांडव है? हाँ, कौन सा पांडव है जो समझते हैं कि हम युधिष्ठिर है, स्टेबल माइंड वाले हैं? जरा हाथ तो खड़ा करो युधिष्ठिर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, जो समझते हम भीम है, स्ट्रांग विल पावर है ना, फुल कॉन्फिडेंस वाले, वेरी गुड। जो समझते हम अर्जुन है, पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले हैं, बहुत अच्छा। जो समझते हम नकुल है, नियमों पर चलने वाले, जीवन जीने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, वेरी गुड। और जो समझते हैं हम सहदेव है, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देना जानते हैं बिना किसी अपेक्षा के, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो कौन है? वो कौन है? हाँ, कौरव तो यहाँ हो नहीं सकते हैं, पांडव ही है। लेकिन आज जो इस मंच से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ बैठा हुआ हर कोई अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे अर्जुनों को बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भगवान के साथ प्रीत बुद्धि बनने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नेगेटिव वातावरण के अंदर पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने के लिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इसलिए कहा कि पांडव ही यहाँ आ सकते हैं, अर्जुन ही यहाँ बैठ सकते हैं, बाकी कहीं यहाँ आए भी होंगे लेकिन एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, बाहर ही घूम रहे होंगे। जो कौरव है वहाँ यहाँ आ नहीं सकते हैं वो। लेकिन आप सभी यहाँ इतना शांति से बैठे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी ओर कौरव माना कौन? तो कौरव माना अधर्म पक्ष के वाचक, धृतराष्ट्र माना जो राज सत्ता, बाहुबल और भूमि के अभिमान में अंधा था। स्थूल में अंधा होने की बात नहीं है, लेकिन सत्ता में अंधा था, राज सत्ता, बाहुबल, भूमि के अभिमान में अंधा। और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध लिया। जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि आज अगर किसी का कोई व्यक्ति अगर नेत्रहीन हो जाए किसी कारणवश, तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए, तो ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लिया? लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को देखो, कितना सुंदर उसने ये बात दर्शाया है कि आज की दुनिया में जब कोई पति गलत कार्य करता है, गलत रास्ते का चुनाव करता है, तो उसकी पत्नी जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए उस वक्त आंखों पर पट्टी बांध लेती है, उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है। तो यही तो गांधारी है। आज जब किसी के साथ अन्याय करते हैं तो अन्याय को देखते हुए वो पत्नी उसके पति को रोकना चाहिए कि भई ऐसा अन्याय न करो, लेकिन उस वक्त वो भी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, जानते हुए भी रोकना नहीं चाहती है,
वही तो गांधारी है आज की दुनिया के अंदर। ऐसी अनेक गांधारियां हैं, और जब कोई उसके पास जाते भी है कि भाई आपके पति को बताओ कि भाई इतना अन्याय तो न करे हमारे साथ, जानते हुए भी क्या कहेगी, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, चलो हम देखेंगे और हम बताएंगे उनको। यही कहते हैं ना, कोई रोकने का प्रयास नहीं करते। और फिर मेरे सामने 100 कौरवों के नामों की लिस्ट आ गई। जब मैं नामों को पढ़ रही थी तो अधिकतर कौरवों के नाम दू से आरंभ हो रहा है, और दू माना दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं वो थे सारे कौरव। दुर्योधन, दुशासन, दुशह, दुशल, दुर्मुख, दुर्बुद्धि, दुर्विमोचन, दुष्कर्ण, एक एक इंद्रिया दुष्टता लिए हुए। मैं सोचने लग गई कि आज कलयुग में भी माँ बाप अपने बच्चों के नाप इतने सुंदर रखते हैं, अर्थ वाले रखते हैं, कोई माँ बाप अपने नाम बच्चों के नाम दू से आरंभ नहीं करते। आज की दुनिया में दू से एक ही नाम याद आता है मेरे समझ में, दुष्यंत, जो दुष्टता का अंत करने वाला, एक ही नाम आता है। लेकिन ये गांधारी और धृतराष्ट्र कैसे माँ बाप थे जो उन्होंने अपने बच्चों के नाम ऐसे रखे। लेकिन तभी महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कि एक एक व्यक्ति के नाम जो चयन किए हैं, एक एक बच्चे के नाम जो चयन किए, आज की दुनिया में प्रैक्टिकल कैरेक्टर्स ऐसे हैं। दुर्योधन माना जो धन का दुरुपयोग करने वाला, आज समाज में ऐसे बच्चे हैं या नहीं है जो धन का दुरुपयोग करना जानते हैं। दुशासन करने वाले लोग हैं या नहीं आज के समाज के अंदर है। दुर्मुख यानी जिसके मुख से हमेशा बुरी बातें ही निकलती हो, दुर्विमोचन जिसकी बुरी दृष्टि हो, दुष्कर्ण जो हमेशा बुरी बातें सुनने के शौकीन हो, दुर्बुद्धि जो हमेशा दुष्टता की प्रवृत्ति में रचा बचा हो। तो हर एक कैरेक्टर वाइज आज की दुनिया में ऐसे नाम से नहीं होंगे लेकिन कैरेक्टर वाइज ऐसे लोग हैं प्रैक्टिकल में। और लास्ट में एक बहन जो भी दुशीला, शील माना चरित्र, दुशीला यानी जो दुष्टता वाला चरित्र रखने वाली। कई बार कई माताएं बहनें हमारे पास आती है और हमें सुनाती है, क्योंकि हमें तो टाइम नहीं होता है आज की दुनिया की सीरियलें क्या चल रही है वो देखने का, लेकिन बताती है हमें कि बहन जी आज की दुनिया में ऐसी ऐसी सीरियल बनाई जाती है जो प्रैक्टिकल दुनिया में हो रहा है उसका प्रैक्टिकल चित्रण है कि नहीं है। आज के टीवी के ऊपर जो सीरियल आती है क्या होती है उसमें, घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, यही बातें दर्शाई है या नहीं है। है ऐसी बातें, और उसमें नारियों की भूमिका क्या दिखाई है, ईर्ष्या बदला लेने की भूमिका नारियों की दर्शाई है। तो वही तो दुष्शीलाएं हैं जो ऐसे दुष्टता वाले चरित्र हीन कर्तव्य करती है, तो ये दुष्शीलाएं नहीं है। समाज के अंदर ऐसी दुष्शीलाएं बहुत है, जो ईर्ष्या करके बदला लेना, पॉलिटिक्स करना, यही सब उनको समझता है, यही तो दुष्शीलाएं हैं। तो 100 कौरव और 5 पांडव है ना, तो आज सारे संसार के अंदर ये समझ में आ जाता है कि पांडव कौन है, कौरव कौन है। और कुरुक्षेत्र में महायुद्ध जो हुआ, कि गीता का जन्म कहाँ हुआ, तो कहा कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रक्षेपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है और युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल के इस संघर्ष में सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है, ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। जब मैं पिछले साल गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र गई थी तो वहां मुझे एक बात बहुत अच्छी जानने को मिली कि जब मैं गई वहां पर तो कार्यक्रम के बाद कुछ लोग ने मुझे कहा कि चलो देखने चलते हैं यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को। तो जब मुझे ले जा रहे थे तब मुझे उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने पूछा क्या था, तो कहा थानेश्वर। थानेश्वर जो थानेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता था और इतना छोटा सा कस्बा था वो थानेश्वर, शिवजी के मंदिर से उस स्थान को जाना जाता था। तो मैंने पूछा उस भाई से फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा, तब उन्होंने मुझे बताया और मैंने इंटरनेट में ये चेक करके क्लियर किया इस बात को कि सही है या नहीं है। तो कहा 1947 में एक कलेक्टर यहाँ आए थे जिन्हें ये महसूस हुआ कि इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध यहाँ हुआ, साक्षात भगवान यहाँ आए और उसका नामो निशान नहीं है। यानी सोचने की बात तो ये है कि 1947 के पहले कुरुक्षेत्र नाम की कोई जगह भारत के नक्शे पर थी नहीं और 1947 में उस कलेक्टर ने उस थानेश्वर वो छोटे से कस्बे को कुरुक्षेत्र नाम दिया। बड़ा आश्चर्य लगा। आज भी अगर आप जाएंगे कुरुक्षेत्र में, स्टेशन पर उतरेंगे तो एक तरफ कुरुक्षेत्र लिखा होगा तो दूसरी ओर थानेश्वर ही लिखा होगा जो थानेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता था। उसके बाद 1947 के बाद उन्होंने जब कुरुक्षेत्र नाम दिया उसके बाद उसको विकसित करना शुरू किया, कई ऐतिहासिक स्थल बना दिए गए और बना करके उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आए। यानी 1947 के पहले उसका अस्तित्व ही नहीं। आज पानीपत का युद्ध हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है लेकिन कुरुक्षेत्र में हुआ ये महाभारत का युद्ध उसका कोई नामो निशान नहीं, हिस्ट्री में भी नहीं। कितनी वंडरफुल बात है, ये तो आश्चर्य की बात नहीं लगेगी। खैर उसके बाद मुझे वहां लेके गए एक स्थान पर जिसको कहा ज्योतिसर, और ज्योतिसर वो स्थान है जो एक मैदान है जहां दिखाते हैं कि यहां युद्ध हुआ था। तो जब मुझे बताया कि ये वो स्थान है जहां युद्ध हुआ था और वहां पर एक पेड़ के नीचे एक रथ, एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है कि जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ तो यही वो स्थान है बीच का कि यहाँ पर भगवान ने रथ को लाकर खड़ा किया जहां से वो दोनों सेनाओं को आमने सामने देख सकता था। और उसके बाद उसका विषाद शुरू हुआ और उसने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा मुझे युद्ध नहीं करना है। तो उस स्थान को दिखाया मुझे कि यहाँ वो युद्ध, यहाँ अर्जुन का रथ लाकर खड़ा किया था जब अर्जुन को विषाद आया और फिर यहाँ भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया। तो मैंने उस भाई से पूछा एक बात बताओ, ये गीता का ज्ञान भगवान जब दे रहे थे 18 अध्याय 700 श्लोक जो सुनाए अर्जुन को, तो कितना समय लगा होगा? तो उस भाई ने मुझे बताया कि शास्त्रों के अनुसार 3.5 घंटा दिखाते हैं कि भगवान को सारा गीता ज्ञान 700 श्लोक सुनाने में 3.5 घंटे लगे। तो मेरे मन में एक विचार आया, पता नहीं आप लोगों ने कभी सोचा है कि नहीं सोचा है। तो मैंने उस भाई से पूछा एक बात बताओ, कि 3.5 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया, जो युद्ध के लिए इतना उतावला हो रहा था और भगवान 3.5 घंटे तक उसको ज्ञान देते रहे, तो क्या दुर्योधन के पास इतना धैर्यता था जो 3.5 घंटे तक कोई रिएक्शन नहीं किया दर्शाया होगा? जब मैंने ये बात पूछी तो वो भाई मेरा चेहरा देखता रहा और कहने लगा, उसके बारे में तो शास्त्र में कुछ लिखा नहीं है कि 3.5 घंटे तक दुर्योधन ने क्या किया। फिर कई लोग उसमें जोड़ देते हैं कि उस समय भगवान ने सबको हिप्नोटाइज कर दिया, इसलिए सब शांत हो गए हैं। कई लोग मुझे ऐसे सुनाते हैं कि उस समय भगवान ने हिप्नोटाइज कर दिया, इसलिए दुर्योधन भी खड़ा खड़ा देखता रहा, कुछ नहीं किया। लेकिन आज सोचने की बात है कि रास्ते पर कोई 2 व्यक्ति में झगड़ा हो जाए और मारपीट पर अगर आ जाए बात, और आप एक व्यक्ति को सज्जन देखो और सज्जन को देखते हुए आप उसको कहो मैं तुम्हें गीता ज्ञान सुनाता हूं, तो दूसरा क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, कहेगा गीता ज्ञान देना है तो घर में देना, यहां नहीं, यही कहेंगे ना। तो दुर्योधन भी ये कह सकता था भगवान को कि भाई तू हमें समझाने बार बार आता रहा, तो उस समय गीता ज्ञान घर में क्यों नहीं दिया अर्जुन को? ये युद्ध का स्थान थोड़ी गीता ज्ञान देने का है। गीता ज्ञान देना है तो घर में दो, ये वो स्थान नहीं है, यहाँ तो युद्ध करना है। अभी बात युद्ध तक पहुंच गई है, वो रुक सकता था, उसमें धैर्यता होती थी। 3.5 घंटे तक कोई रिएक्शन न हो, ऐसा कभी हो सकता है? प्रैक्टिकल सोचो आप। कहते हिप्नोटाइज, अरे हिप्नोटाइज क्या कर दिया भगवान को? किसी को हिप्नोटाइज करने की जरूरत पड़ती है क्या? अरे प्रैक्टिकल बात अगर सोचे कि भगवान को भी गीता ज्ञान देना था तो घर में देता था। और सबसे बड़ी बात कि गीता ज्ञान की आवश्यकता किसको थी, अर्जुन को या दुर्योधन को? किसको आवश्यकता होती है सद्बुद्धि की? अर्जुन के पास तो सद्बुद्धि थी ही, सद्बुद्धि की आवश्यकता तो दुर्योधन को थी। तो गीता ज्ञान किसको सुनाना चाहिए, दुर्योधन को या अर्जुन को? दुर्योधन को देना चाहिए, अर्जुन को देने का कोई मतलब ही नहीं था। अर्जुन तो था ही सद्बुद्धि वाला। घर में भी आप एक सद्बुद्धि वाला बच्चा हो, सुपात्र हो और एक कुपात्र हो, तो समझाने का प्रयत्न किसको करेंगे? जो कुपात्र है, नहीं तो समाज में आपका नाम बदनाम कर देगा, उसको समझाएंगे या सुपात्र को समझाते रहेंगे, किसको समझाएंगे? और ये नहीं है कि भगवान ने दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न नहीं किया था, भगवान दुर्योधन को भी समझाने गया था, लेकिन दुर्योधन ने क्या कह दिया? दुर्योधन ने कह दिया भगवान से कि देखो धर्म क्या है मैं जानता हूँ, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि धर्म क्या है और धर्म क्या है, मैं दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि धर्म को जानते हुए मैं उस पर चल नहीं सकता हूँ और अधर्म को जानते हुए उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। आज की दुनिया के दुर्योधनों का प्रॉब्लम भी क्या है? धर्म क्या है जानते हैं, अधर्म क्या है वो भी जानते हैं, लेकिन धर्म पर चलने की शक्ति नहीं, अधर्म को छोड़ने की शक्ति नहीं, यही तो प्रॉब्लम है आज की दुनिया के लोगों का भी, यही प्रॉब्लम है ना। इसलिए उसको समझाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जब सब कुछ जानता है तो उसको समझा करके फायदा क्या है, है ना। तो कितनी सुंदर बात कही यहाँ, और इसीलिए अर्जुन को गीता ज्ञान देना आरंभ कर दिया। उसके बाद मेरे मन में विचार आया, अक्षौणी की सेना, सोचने की बात तो ये है कि कितनी अक्षौणी, वो भी 18 अक्षौणी, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ, इतने अक्षौणी, 18 अक्षौणी सैनिक थे। तो मैं इंटरनेट पर उसका सर्च करने लगी कि एक अक्षौणी में कितने लोग होते हैं। तो मैंने देखा कि उस समय महाभारत के युद्ध के संगठन के समय पति का इस्तेमाल होता था, इकाई निश्चित किया गया था, और एक पति में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार आते थे एक पति में। और इसी तरह एक अक्षौणी में कितना, तो एक अक्षौणी में दिखाया कि एक अक्षौणी के अंदर 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 65,610 घुड़सवार थे। इतने एक अक्षौणी में थे। तो 18 अक्षौणी में कितने होंगे, उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 18 से, तो 18 अक्षौणी के अंदर 393,660 रथ थे, 393,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। अब सोचने की बात हो, जहां इतना पॉपुलेशन हो और 1947 तक उसका कोई अस्तित्व न हो भारत के नक्शे पर, ऐसा हो सकता है? और इतना ही नहीं, अगर हाथी के ऊपर एक हाथी को चलाने वाला महारथ और एक योद्धा, यानी दो है, रथ पर एक सारथी और एक योद्धा दो है, तो ये फिगर को अगर डबल कर दिया जाए तो रथ पर कितने थे, तो 7,87,300 रथ पर थे, 7,87,320 हाथी पर थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घोड़ों पर थे, घुड़सवार थे, विच अमाउंट्स टू टोटल 47,23,920। इतना पॉपुलेशन कुरुक्षेत्र में था और फिर भी उसका नामो निशान नहीं। कितनी आश्चर्य की बात है, आज भी इतना पॉपुलेशन नहीं होगा। अगर देखा जाए तो हरियाणा का भी शायद इतना पॉपुलेशन नहीं होगा, है ना? और इतने रथ, इतने हाथी, 393,660 हाथी, तो कितना एरिया चाहिए एक एक हाथी को, कितना एरिया चाहिए रथ के लिए, कितने घोड़े चाहिए? और इतने घोड़े अगर है, 11,80,000 घोड़े उस समय में, तो पूरा हरियाणा भी अगर पूरा मैदान के रूप में लिया जाए तो भी छोटा पड़े, छोटा पड़े। इतना ही नहीं, लेकिन इस बात को आगे देखा जाए तो कहा जाता कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था, युद्ध विराम को प्राप्त कर लेता था, क्योंकि उस समय कोई फ्लड लाइट तो थी नहीं कि रात में भी युद्ध चलता रहे, तो सूर्यास्त होते ही सब शांत हो जाता था और सब अपने अपने शिविरों में चले जाते थे। माना 47,00,000 लोगों के रहने का बंदोबस्त था, तभी तो चले जाते थे, है ना? और उस युद्ध के मैदान से हट करके घोड़े हाथी सबको अपने अपने शिविरों में बांध देते थे, तो पूरा हरियाणा तो कम पड़ेगा ही। और फिर कहा जाता सब साथ में मिलके भोजन करते थे रात को। अब 47,00,000 लोगों का भोजन बनाने वाले कितने थे, सोचने की बात है। और युद्ध में जब शस्त्र कम पड़ जाते थे तो शस्त्र को ला करके देने वाले वो कितने थे, इन सब लोगों को कैलकुलेशन किया जाए तो आज भारत की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है, उस समय 1.5 करोड़ खाली कुरुक्षेत्र में, सोचने की बात है। यही दर्शाता है कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, और इसीलिए उसने कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं लिखा, हरियाणा का युद्ध भी नहीं लिखा, महाभारत का युद्ध था। महाभारत यानी उस समय भारत की पॉपुलेशन इतनी हो सकती है, आज से 5,000 साल पूर्व इतनी पॉपुलेशन अगर भारत की हो सकती है तो आज तो कितनी हो जानी चाहिए, है ना। तो महाभारत का युद्ध यानी हर भारतवासी का ये युद्ध है। और महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तो समझना चाहिए महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर में क्या चल रहा है, महाभारत चलता है या नहीं चलता है? तो 1.5 करोड़ जो है भारत के अंदर, हर एक का ये युद्ध है या नहीं है? तो वही महाभारत का समय आ गया है या नहीं आ गया है? और इसीलिए कहा महाभारत के समय अब आपको सही चुनाव करना होगा कि किस तरफ जाना है, पांडवों के तरफ जाना है या कौरवों के तरफ जाना है, किस तरफ जाना है? हाँ, पांडव बनकर के युद्ध करना है या कौरव बनकर के जीवन का संघर्ष करना है, क्या करना है? पांडव बनकर करो तो भगवान का साथ मिलेगा और विजय हमेशा निश्चित रहेगी। कौरव बनकर के युद्ध करेंगे तो कभी भी विजय नहीं हो सकती है, हर पल हार का अनुभव करते रहेंगे, हर पल हार का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए कहा कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है और हमारी अंतर चेतना में निरंतर यह युद्ध चल रहा है। और इसीलिए ये वही महाभारत काल कहो ये पुनः आ गया है, जब हर कोई जीवन के संघर्ष में युद्ध में है। और इसीलिए कहा भगवान को साथी बना लो तो जीवन का युद्ध आसान हो जाएगा, नहीं तो जीवन का युद्ध बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया वो युद्ध कैसे करना है, वही गीता ज्ञान आप सबको मिल रहा है ये 2 दिनों के अंदर। देखो विषाद को दूर करने के लिए, विषाद माना स्ट्रेस, अर्जुन को स्ट्रेस हो गया था, तो कल आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पर लेक्चर मिला, तनाव के ऊपर लेक्चर मिला, तो पहला अध्याय हो गया। अच्छा, दूसरा अध्याय आत्मा का लेसन था कि अर्जुन को भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, तो कल सुबह आपको आत्मा का ज्ञान मिला। अच्छा, चौथे अध्याय में भगवान ने परमात्मा का परिचय दिया, तो कल आपको परमात्मा का यथार्थ परिचय मिला। फिर छठे अध्याय में योग सिखाया, तो कल शाम का सत्र आपका योग का हुआ या नहीं हुआ, योग का आधार विधि हुई। फिर 8वें अध्याय में ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, काल चक्र का परिचय, जो आज 10 बजे जो है वो काल चक्र का परिचय आपको मिलेगा। और गीता में समय प्रति समय कर्म की गुह्य गति की बातें आती है, जो आज शाम का सत्र है, कर्म की गुह्य गति क्या है, कर्म को कैसे समझना चाहिए, वो कर्मों की गुह्य गति। और 7वें अध्याय में भगवान ने साधारण तन का आधार जो लिया गीता ज्ञान देने के लिए, जिसके कारण कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला पहचान सकते हैं, तो आज आपको ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी को भी सुनने को मिलेगा। तो वो सारा गीता ज्ञान ये 2 दिन के अंदर आपको मिल गया, मिला कि नहीं मिला, है ना। तो इसीलिए यही गीता ज्ञान भगवान ने 5000 साल पहले दिया था, और पुनः भगवान आकर के यही गीता ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। अब इसीलिए कहा अब अर्जुन बनना है या दुर्योधन बनना है, या दुर्योधन की सेना में जाके खड़ा रहना है या अर्जुन के सेना में खड़ा रहना है, ये चुनाव किसका होगा, हमारा अपना होगा, ठीक है। तो ये है गीता ज्ञान की भूमिका, और गीता ज्ञान तो आपको 2 दिन के अंदर प्राप्त हुआ ही है। अभी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे परमात्मा की स्मृति में, परमात्मा को याद करते हैं। 2 मिनट सभी शांति से बैठ जाइए।